Shanti. राजयोग अभ्यास के द्वारा हमें जीवन में विशेष प्राप्तियां क्या क्या होती हैं, ये तो आप सुन ही रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, लेकिन आज हम राजयोग से जिन गुणों और शक्तियों का विकास होता है उस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जब हमें ये ज्ञात हो जाता है कि इससे ये लाभ होगा, ये प्राप्ति होगी, तो फिर हम उस महत्व से उस अभ्यास को अपने जीवन में करते हैं। तो आज अगर हम शक्तियों की बात करते हैं तो इस भौतिक जगत में, इस विश्व में भी अनेक शक्तियां हैं जो इस संसार को चला रहे हैं। यंत्र हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी के आधार पर चलते हैं। बहुत सारे साधन हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के आधार पर चलते हैं। और बिजली जो है वो थर्मल एनर्जी से बनती है, एटॉमिक एनर्जी है। आपस में हम कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिए साउंड एनर्जी है। तो कई प्रकार की शक्तियां इस भौतिक जगत में हैं। लेकिन जब हम मनुष्य की शक्तियों की बात करते हैं तो फिर ये 2 प्रकार की हैं, बाह्य शक्तियां और आंतरिक शक्तियां। बाह्य शक्तियों में शारीरिक शक्ति, जिसे हम शारीरिक बल कहेंगे, धन की शक्ति, पद की शक्ति, ये हैं। और आंतरिक शक्तियों में मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, नैतिक शक्ति, जिसे हम चारित्रिक शक्ति भी कह सकते हैं। तो हम देखते हैं दुनिया में शारीरिक शक्ति के आधार पर लोग कई ऐसे असामान्य प्रदर्शन करते हैं। कोई बालों से ट्रक खींचता है या दांतों से एरोप्लेन खींचता है या कुश्ती लड़ते हैं, उसमें गोल्ड मेडल लेते हैं, तो उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स या गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आता है। बौद्धिक शक्ति के आधार पर वैज्ञानिकों ने आज इतने आविष्कार किए हैं। स्टीफन हॉकिंस एक वैज्ञानिक हैं जो सिर के नीचे से, गर्दन के नीचे से, जिनके शरीर का पूरा हिस्सा पैरालाइज है किसी बीमारी के कारण, लेकिन उनका मस्तिष्क कार्य करता है। तो आज भी वो, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, आज भी वो वैज्ञानिक जगत में अपनी धाक बनाए हुए हैं अपने आविष्कारों के बल पर। ऐसे ही मानसिक शक्ति हर एक मनुष्य के अंदर होती है, लेकिन यदि हम उसका विकास करते हैं तो उच्च मनोबल के आधार पर इंसान जो लक्ष्य अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है उसमें वो सफल होता है। लेकिन बहुत कम लोग, 5% लोग ही हैं इस संसार में जो अपनी मानसिक शक्तियों का सदुपयोग कर पाते हैं। नहीं तो मानसिक शक्तियां बिखरी होती हैं, हम उसको एक सही दिशा नहीं दे पाते। कई भाई बहने हमसे पूछते हैं, बहन जी क्या हम राजयोग का अभ्यास करेंगे तो हमारे जीवन में कोई सिद्धियां प्राप्त होंगी या कोई चमत्कार भी हो सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ संत महात्मा ऐसे प्रदर्शन करते रहे हैं, वो कोई मंत्र जपते हैं और जिस वस्तु की इच्छा रखते हैं वो उन्हें प्राप्त हो जाती है, उनके सामने हाजिर हो जाती है और वो अपने भक्तों को देते हैं, या वो किसी को भभूत देते हैं और कहेंगे ये भभूत लेने से आपका रोग दूर हो जाएगा या कष्ट निवारण हो जाएगा। तो कई बार सचमुच ऐसा होता भी है, क्योंकि जो लेने वाला है उसकी उनमें गहरी आस्था होती है, तो वो आस्था काम करती है, भभूत काम करती है नहीं वो, लेकिन जो आस्था है उसके परिणाम इस प्रकार के मिलते हैं और इससे उनको नाम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, लेकिन उससे किसी का जीवन परिवर्तन नहीं होता है। या हम कहेंगे समाज का उससे कोई कल्याण नहीं होता है, और इसीलिए जो सच्चे संत हुए उन्होंने इस प्रकार की सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। स्वामी रामतीर्थ के जीवन की घटना है कि एक बार एक सन्यासी उनके पास आए और अपनी सिद्धियों का वर्णन करने लगे कि आपके आश्रम के पास ये जो नदी बहती है इसको मैं चलकर पार कर सकता हूँ, मैं हवा में ऊपर उठ सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा उनको कितने वर्ष लगे आपको, तो कहा 12 वर्ष का समय मुझे लगा। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा उस समय, लेकिन नदी पार गांव से उनका दूध वाला आता था और उन्होंने सन्यासी के सामने ही अपने दूध वाले से पूछा आपने कितने पैसे में नदी पार की, उसने कहा 1 पैसे में। तो उन्होंने उन सन्यासी को कहा कि देखो जो काम मेरा दूध वाला 1 पैसे में कर सकता है उस काम को करने में आपने 12 साल लगा दिए, आपने सन्यास क्यों किया है? आपने ईश्वर प्राप्ति के लिए सन्यास किया है और यही आपने ईश्वर के लिए साधना की होती तो आज आप ईश्वर को प्राप्त कर चुके होते। तो कहने का भाव जो सच्चे संत हैं उन्होंने ऐसी अल्पकाल की सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। तो राजयोग में भी हम ऐसे चमत्कारों को महत्व नहीं देते हैं, विश्वास नहीं करते हैं ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन महत्व नहीं देते हैं। लेकिन राजयोग की सबसे बड़ी सिद्धि है कि हमारे कर्म ही श्रेष्ठ हो जाते हैं, हमारा जीवन ही परिवर्तन हो जाता है, ये जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। जीवन में जो भी कमियां हैं वो अंधकार के समान है। हम कहते हैं अंधकार का कोई स्रोत नहीं होता है, वो प्रकाश का अभाव है। ऐसे ही जो कमियां हैं वो गुणों और शक्तियों का अभाव है। यदि हम उनका विकास कर लेते हैं तो वो कमियां स्वतः ही जीवन से समाप्त हो जाती हैं। आज अगर हम घर घर की स्थिति देखते हैं तो कैसी है? घर घर की स्थिति को हम नरक के समान कह सकते हैं, क्योंकि हर घर में स्वार्थ है, ईर्ष्या है, नफरत है, बदले की भावना है, निराशा है, भय है। दूसरे शब्दों में कहेंगे घर घर में रामायण और महाभारत चलते हैं। क्यों कहा हमने रामायण और महाभारत चलती है? क्योंकि ये दो शास्त्र मनुष्य की दो कमियों पर बने हुए हैं। रामायण ईर्ष्या की कहानी है, हम सब रामायण की कहानी जानते हैं कि जैसे ही राजा दशरथ ने राम को राज तिलक की घोषणा की तो केकई की दासी मंत्रा उसको ईर्ष्या हुई, कुशल्या का बेटा क्यों राजा बने, मेरी रानी केकई का बेटा भरत राजा होना चाहिए। क्योंकि रानी केकई ने राजा दशरथ की समय पर प्राण रक्षा की है और इसीलिए राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें 2 वर दिए हैं, और ये सही समय है कि केकई को अपने वर ले लेने चाहिए। और जब उसने ये सारी बात केकई को समझाई तो उसे समझ में आई और उसने राजा दशरथ से अपने वो 2 वर मांगे। राम को वनवास हुआ और भरत को राज तिलक की बात उसने कही, हालांकि भरत ने राज तिलक लिया नहीं, लेकिन राम को वनवास हुआ तो पूरी रामायण की कहानी बनी। महाभारत की कहानी है, भाई भाई के द्वेष की कहानी है। कौरव पांडव दोनों भाई थे लेकिन उनमें कभी भी प्रेम नहीं रहा, धन संपत्ति राज्य के बंटवारे को लेकर के हमेशा ही उनमें द्वेष था। और उसमें चिंगारी डाली द्रौपदी के 2 शब्दों ने, क्या कहा उसने, अंधे का बेटा अंधा। उससे दुर्योधन को इतना अपमान महसूस हुआ कि उसने उसी समय निश्चय कर लिया मुझे इसका बदला लेना है। उसने जुए का षड्यंत्र रचा और न सिर्फ जुआ खेला लेकिन धोखे से पांडवों को जुए में हराया, अपने अपमान का बदला लिया, पांडवों को वनवास हुआ, 13 साल वनवास के बाद लौटे तो कहा, राज्य तो क्या सुई की नोक के बराबर भी जमीन में नहीं दूंगा। परिणाम युद्ध हुआ और पूरे कुल का विनाश। यही है महाभारत की कहानी। तो क्या आज भाई भाई में द्वेष नहीं है? घर घर में आज ये कहानी है। और ऐसे एक शब्द तो क्या हम कितने ही शब्द सारे दिन में बोलते हैं जिससे दूसरों का अपमान होता है। तो कौन सी ऐसी शक्तियों की कमी है जो घर घर नरक बन चुका है, और उन शक्तियों का हम विकास करेंगे तो वही घर घर स्वर्ग बन सकता है। तो आप देख रहे हैं चित्र में राजयोग अभ्यास से जो शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, उसमें एक विशेष शक्ति है सहन करने की शक्ति। आज हम किसी की एक छोटी बात को सहन नहीं कर सकते। किसी ने एक कहा तो हम दो कहेंगे, दो कहा तो चार, और चार कहा तो ईंट का जवाब पत्थर से देना है। जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए। हमारी भावना क्या होती है? हम सहन कर सकते हैं, ये भावना होती है, या जिसने जैसा किया है वैसा ही उसको मिलना चाहिए, ये भावना ज्यादा होती है। और उसका परिणाम क्या होता है? कई बार छोटी छोटी बातें बड़ी समस्या बन जाती हैं हमारे जीवन में, और यहाँ तक कि कई बार वो विनाशकारी भी हो जाती हैं। हम सोचते हैं हम क्यों सहन करेंगे, हमने गलती की ही नहीं है, तब तो बिल्कुल भी हम सहन नहीं करेंगे, हम चुप रहेंगे तो हमारी ही गलती मानी जाएगी। तो ऐसी घटनाएं आए दिन अखबारों में छपती हैं। तो ऐसे ही कुछ दिन पहले का एक समाचार था कि एक माँ ने अपनी बेटी को रॉड से मार के इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। और कारण क्या था कि वो अपनी मौसी के घर बिना पूछे चली गई, क्योंकि उसकी माँ का अपनी बहन के साथ बोलचाल काफी समय से बंद था, और उसको पता चला कि मेरी बेटी बिना पूछे वहां चली गई, तो इतना गुस्सा आया उसको कि उसने इतना मारा उसको कि उसकी मृत्यु हो गई। बताइए, ऐसी कोई बात नहीं है जिसे सहन नहीं किया जा सके। लेकिन जब इंसान सहन नहीं करता है तो इतना गुस्सा उसको आता है। कहते हैं मनोविज्ञान कहता है एंगर इज टेम्परेरी इंसैनिटी, थोड़े समय का पागलपन है। जैसे पागल व्यक्ति को ये भान नहीं होता मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे ही क्रोध में मनुष्य की स्थिति होती है। हम वो कहते हैं वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और ऐसे ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता है। इसके असर हमारे संबंधों पर पड़ता है, संबंधों में प्रेम खत्म होने लगता है, कई बार संबंध टूट भी जाते हैं। तो क्यों गुस्सा आता है? किसी ने मेरी बात नहीं मानी। ज्यादातर गुस्सा हमें इसलिए आता है इसने मेरी बात नहीं मानी, हम जैसा चाहते हैं वैसा इन्होंने नहीं किया। तो मानो अगर कोई मेरी बात नहीं मानते हैं तो ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि हर एक व्यक्ति का विचार भावनाएं व्यक्तित्व अलग अलग है, कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं है। आज देखते हैं हम इतने अरबों मनुष्य संसार में रहते हैं, क्या दो मनुष्यों के चेहरे मिलते हैं? तो बनावट में भी दो इंसान एक जैसे नहीं है, तो अपने विचार भावनाओं में कैसे होंगे? तो जैसा हम सोच रहे हैं जरूरी नहीं है सामने वाला भी वैसा सोचता है, उसके सोच हमसे अलग हो सकती है। तो हम उनके विचार भी जानने की कोशिश करते हैं। फिर भी जिनसे आप अपेक्षा रखते हैं इनको आपकी बात माननी चाहिए, मानो आपके परिवार के हैं या आपके कार्य क्षेत्र के कर्मचारी हैं, तो वो 10 में से 9 बार आपकी बात मानते ही हैं। वो कभी एक बार ऐसा होता है जब वो समझते हैं आप गलत हैं वो सही हैं, तो हो सकता है आप गलत भी हो सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि हम ही हमेशा सही होंगे। तो उस स्थिति में भी हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए जब वो इतनी बार हमारी बात मानते हैं, लेकिन इसमें अहम आ जाता है और फिर हम अपने अधिकार से हमेशा दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपसी संबंधों में अगर हमारी ये आपसी समझ बनी रहती है तो फिर क्रोध की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। काम करवाने के लिए हमें गुस्सा आता है, कोई काम में गलती करता है बार बार या काम नहीं कर रहा है तो हम सोचते हैं गुस्सा नहीं करेंगे तो काम तो होगा ही नहीं। तो क्या गुस्से से काम हो जाता है? कहेंगे हो जाता है। कई बार तो समझते ही ऐसे हैं कि गुस्सा नहीं करेंगे तो काम होना ही नहीं है, तो गुस्से से काम जरूर हो जाता है। सामने वाला भय के कारण चुप रहता है लेकिन उसके मन की भावनाएं आपके प्रति बदल जाती हैं और वो वैसा काम कभी नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उसके मन में बदले की भावना है तो वो अवसर ढूंढते रहते हैं और जैसे ही उनको अवसर मिलेगा वो आपके लिए समस्या पैदा करेंगे तो भविष्य परिणाम बुरे हो सकते हैं। और फिर हम अपने लिए सोचें कि क्या हमारे से कोई गुस्से से काम कराएगा तो मुझे पसंद आएगा? आता है पसंद? हम सोचते हैं काम तो करना ही है लेकिन थोड़ा प्यार से तो कह सकते थे, थोड़ा अच्छे शब्दों में कह सकते थे। तो जो व्यवहार हम अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों को भी पसंद होता है। बच्चों पर गुस्सा करते हैं और उसको हम जस्टिफाई भी करते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कहना नहीं मानते हैं, हाँ गलत काम करते हैं तो गुस्सा आप करते हैं। वहां भी यही होता है, भय के कारण बच्चे आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं बच्चों को गुस्से में आकर जो हमें नहीं कहने चाहिए, हाँ गधा है, मूर्ख है, बेवकूफ है, कभी नहीं सुधरेगा, पता नहीं उस समय जो मन में आ जाएगा वो कह देंगे उनको, तो बच्चे आपके कहे अनुसार करने लगेंगे, किताब उठा के पढ़ने भी लगेंगे लेकिन वास्तव में वो पढ़ नहीं रहे होते हैं। आप खुश जरूर होते हैं कि गुस्सा किया तो देखो ये पढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार वो बच्चे उन बातों को, उन शब्दों को स्वीकार कर लेते हैं और आपको वैसा ही बनकर दिखा देते हैं। और या नहीं तो वो आपसे गुस्सा करना सीख लेते हैं, वो समझ जाते हैं अपनी बात मनवानी है तो गुस्सा करो, आपका ही सामना करने लगते हैं और आपकी समस्या और बढ़ जाती है। ऐसे ही होता है कई बार। लेकिन सही तरीका क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे वही करें जो हम कह रहे हैं तो फिर आप उनको समय दीजिए, आप उनको समझाएं और धैर्य रखें। कई बार बच्चों को एक बार में वो बात समझ में नहीं आएगी, दो बार आपको समझाना पड़ सकता है, तीन बार, चार बार। क्या आप एक बार में बदल जाते हैं? आप अपने लिए देखिए कि क्या एक बार में हम जो चाहते हैं वो कर लेते हैं? तो बच्चों को भी समझने में समय लग सकता है, तो यदि हम उनको समय देते हैं, प्रेम से कोई बात समझाते हैं, उनको कन्विंस कर पाते हैं तो फिर हम उनका विश्वास जीतते हैं और बच्चे वही करेंगे जो आप चाहेंगे, नहीं तो वो करेंगे जो उनके दोस्त चाहेंगे। और ऐसे ही कोई हमारी निंदा करता है, कमी निकालता है तो भी हमें सहन नहीं होता है। वैसे कहते हैं निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई, लेकिन कमी निकालने वाला तो हमें हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। इंसान को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है तो क्या कहेंगे? कमी निकालने वाला हमारा मित्र हो सकता है, हो सकता है। कैसे? वो हमें बताता है कि ये हमारी कमी है। मनुष्य अपनी कमी अपने आप कम देख पाते हैं, दूसरे ही हमें इशारा करते हैं पर वो कई बार उसे बहुत बड़ा चढ़ाकर कहते हैं। मानो 1% है वो, कहने वाला कहेगा आप ऑफिस रोज टाइम पर जाते हैं, अपना काम बहुत जिम्मेवारी से करते हैं लेकिन किसी कारण से आप 2-3 दिन लेट हो गए और काम में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो जो आपका क्रिटिक होगा अब वो कहेगा ये तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, ये तो अपने काम के प्रति लापरवाह है. अब वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन कहने वाला उसको 50 गुना बढ़ाएगा चढ़ाएगा. पर अगर 1% भी मेरे अंदर वो कमी है और हमें रियलाइज होता है, हम उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी शिकायत भी दूर होगी, जीवन में हम आगे बढ़ेंगे. और कई बार ऐसा होता है कि सचमुच वो कमी नहीं है, किसी को गलत फहमी हो जाती है या वो सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं, तो हम स्पष्ट कर सकते हैं. और अगर उन्हें नहीं समझ में आता है तो फिर हम ध्यान ही ना दें, सुनते हुए भी नहीं सुने, क्योंकि वो कमी जब है ही नहीं मेरे अंदर तो हम उसे अपने दिल पर क्यों लें. एक बार ऐसे ही मदर टेरेसा, वो किसी उनका ट्रस्ट चलता था जिसमें रोगी होते थे और उनके लिए उन्हें धन की आवश्यकता होती थी, तो अपने इसी ट्रस्ट के लिए वो एक बिजनेसमैन के पास गई. तो बिजनेसमैन ने उनके बारे में सुना हुआ था, लेकिन उसकी धारणा उनके प्रति अच्छी नहीं थी. तो जब मदर टेरेसा आई और उन्होंने अपना वो बताया कि हाँ मैं किस लिए आई हूँ, तो वो मन में जो था उनके प्रति वो उसने सुनाना शुरू कर दिया उनको. तो काफी ऐसी बातें थी जो बिल्कुल ऐसी थी जो उनको दिल को बुरी लग सकती थी, लेकिन वो बिल्कुल शांत रही. फिर जब उन्होंने पूरा कर दिया तो फिर उन्होंने शांति से उनको कहा, अच्छा आपने ये तो सब मुझे दिया है, आप मेरे पेशेंट्स के लिए क्या दे रहे हैं. तो ये बात उनको बहुत लगी और फिर उन्होंने उनके लिए चेक बना करके दिया. तो कहने का भाव, उन्होंने उसको स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि ये सब जो कह रहे हैं वो गलत फहमी के आधार पर कह रहे हैं. तो जब वो कमी हमारे अंदर है ही नहीं तो हम उसे क्यों दुखी हों, क्यों उसे अपने मन पर लें. फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं किसी भी बात को, और बाद में हमें पश्चाताप होता है कि उस समय हमें नहीं करना चाहिए. तो ऐसी स्थिति होती है तो हम कुछ समय के लिए अपने गुस्से को पोस्टपोन कर दें, तुरंत ना कहें. और जब हम पोस्टपोन करते हैं कुछ समय के बाद अपनी बात कहते हैं, तो उसमें दो बातें होती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग चलता रहता है तो हमें ये समझ में आ जाता है कि सारी गलती सामने वाले की नहीं है, हमारी भी गलती है, इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर लगता है कि नहीं सामने वाले की गलती है, कहना ही चाहिए, और अगर नहीं कहा तो ये फिर से वही गलती करेंगे, तब तक हमारा आवेश कम हो जाता है और हम वही बात शांति से कहेंगे, थोड़ा अच्छे शब्दों में कहेंगे, तो सामने वाले उसे स्वीकार करते हैं और हमें समाधान मिलता है. लेकिन गुस्से में अगर हमने वो बात कही तो सामने वाले की गलती होगी, तो भी वो नहीं मानते हैं और ही सिद्ध करने लगते हैं, परिणाम होता है हमारी समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि गुस्सा गुस्से को जन्म देता है. एक बार ऐसे ही पति पत्नी थे, दोनों बहुत गुस्से वाले स्वभाव के थे. एक गुस्से वाला हो दूसरा शांत हो तो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती है, लेकिन अगर दोनों ही गुस्से वाले हैं तो घर में अशांति रहती थी. अब पति तो काम पर चले जाते थे, पत्नी थोड़ा परेशान रहती थी. एक दिन उसकी पड़ोसन आई, उसने कहा, बहन जी मैंने अपने घर में कथा रखी है, आपको कथा में आना है. तो उसने भी सोचा, हाँ उस दिन उसका मन बहुत अशांत था, तो उसने सोचा मैं जरूर कथा में जाऊंगी. गई वो कथा में और एक पंडित जी थे जो कथा करने के लिए आए थे. तो कथा सुनने के बाद उसने सोचा, क्यों ना मैं इनसे अपनी समस्या कहूं, शायद ये मुझे कोई उपाय बताएंगे. तो उसने बात की उनसे कि मेरे घर में ये समस्या है. तो उन्होंने कहा, बहन मैं तुम्हें उपाय बता सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जो कहूंगा वो आप करोगी, तभी मैं वो उपाय बताऊंगा. तो उसने कहा, आप जो कहेंगे मैं करूंगी. तो उन्होंने पानी की बोतल मंगाई, उसे दिया और कहा कि देखो जब आपके पति गुस्सा करते हैं इसमें से कुछ घूंट पानी अपने मुंह में रख लेना. हाँ पानी पीना नहीं है, पानी मुंह में रखना है और जब तक वो चुप नहीं होते तब तक पानी मुंह में रखना है। वो समझ गई, आप में से भी कुछ लोग समझ गए अब, लेकिन अब पहले से ही उन्होंने शर्त ले ली थी कि बात मानेगी तभी कहेंगे, तो उसने चुपचाप पानी की बोतल ली और घर चली गई। अब रोज की बात थी, वहां तो पति ने गुस्सा किया किसी बात को लेकर, तो उसने आज पानी मुंह में रख लिया क्योंकि वो वादा करके आई थी और बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी, पानी तो मुंह में था। पति ने सोचा इसको क्या हुआ है, आज ये चुप है, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो फिर उन्होंने और जोर जोर से बोला ये कुछ कहे, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि मुंह में पानी था। अब दूसरे दिन भी ऐसा हुआ और दूसरे दिन भी उसने पानी मुंह में रखा, आज भी वो कुछ नहीं बोल रही थी। तो फिर उन्होंने ट्राई किया, क्या सचमुच इसने अपने आप को बदल लिया है? तो देखा कि फिर भी वो नहीं बोल रही है क्योंकि वो पानी मुंह में रखती थी। तो जब उनको पूरा विश्वास हो गया कि सचमुच इसने अपने आप को बदल लिया है, ये शांत हो गई है, फिर उनका ध्यान अपने ऊपर गया कि मैं शायद छोटी छोटी बातों में ज्यादा ही गुस्सा करता हूं, मुझे भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो नेचुरली जब दो लोग नहीं बोलेंगे तो एक भी कितना बोलेगा, और फिर ध्यान रखना शुरू किया तो उन्होंने भी गुस्सा कम कर दिया। और एक दिन ऐसा था जब सचमुच घर में पूरा दिन कोई गुस्से वाली बात नहीं हुई। तो ये बहन इतनी खुश हुई, उसने कहा सचमुच पंडित जी की तरकीब ने काम किया है, मुझे उनको धन्यवाद देना चाहिए। तो गई उनके पास और कहा कि मैं नहीं जानती मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं, आपने सचमुच मेरे नर्क जैसे घर को स्वर्ग बना दिया है, लेकिन वो पानी खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि वो पानी कोई मंत्र वाला पानी नहीं था, वो पानी तो पीने वाला पानी था लेकिन आपको सिखाने के लिए था। जब आपके पति गुस्सा करते हैं उस समय आप थोड़ा शांत रह जाओ, देखो आप शांत रही तो कितने अच्छे परिणाम मिले आपको, आप सदा ही ऐसे करो आपका घर स्वर्ग रहेगा। तो कई भाई बहने कहते हैं बहन जी ये कहानी तक ठीक है, सचमुच हमारे जीवन में जब ऐसे होता है तब हम चुप नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। जो समझते हैं हम शांत रह सकते हैं, कोई गुस्सा करता है नाराज होता है हमारा अपमान करता है फिर भी हम चुप रह सकते हैं उसे सहन कर सकते हैं, वो हाथ उठाइए। आप तो काफी दो दिन के शिविर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, 50% लोग हाथ उठा रहे हैं, तो आप अपने लिए ताली बजाइए। इतने भी सब परिवर्तन करके जाएंगे तो इस शिविर की सफलता है। तो हम कर सकते हैं, ये हमारी शक्ति है, हम जैसा चाहें। आपने सुना दो दिनों में किसी भी परिस्थिति में मुझे क्या रिस्पॉन्स करना है ये मेरी चॉइस होती है, हम क्या सोचते हैं वही हम करते हैं। तो ये सहन शक्ति हमें ज्ञान और योग से प्राप्त होती है। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, एक बच्चा है पेड़ पर पत्थर मारता है, जब पेड़ फलों से लदा हुआ होता है तो उसे क्या मिलता है? फल मिलते हैं, पत्थर की चोट सह करके भी पेड़ मीठा फल देता है, ये प्रकृति में भी गुण है। तो फिर मनुष्य जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है क्या वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता? कर सकता है नहीं कर सकता? कर सकता है। और हम देखते हैं जितने भी महान पुरुष हुए इस संसार में, आध्यात्मिक पुरुष हुए जिन्होंने समाज में बड़े परिवर्तन लाए, उनकी ये विशेषता थी, वो जैसे को तैसा नहीं करते थे। या ईंट का जवाब पत्थर से देना है ऐसा उनका व्यवहार नहीं था, लेकिन हर मनुष्य के प्रति उनके मन में दया प्रेम करुणा क्षमा की भावना थी। उन्होंने हर अपराधी को भी क्षमा किया, ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ाया फिर भी उन्होंने क्या कहा? हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसा व्यवहार उनके साथ हो रहा था तो भी उनके मन के भाव क्या थे? क्षमा के। और यही कारण है वो कह सकते थे कि इनको सजा देना, उनके लिए ऐसी कामना कर सकते थे। हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम क्या कहते हैं, भगवान इसका क्या कर देना, भला कर देना, ये तो यहाँ बैठे हैं आप इसलिए कह रहे हैं। हाँ, लेकिन उसका सत्यानाश कर देना, ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग भगवान को। तो कहने का भाव क्या है वो भी कह सकते थे, लेकिन फिर भी जैसे अभी आपने सीखा, यहाँ का प्रभाव है ना, तो आपने सीखा, तो अभी आप कह रहे हैं भला कर देना। तो ऐसे ही हमेशा जब भी कोई हमारे साथ बुरा करता है उसका भी हम भला करते हैं, तो उनके जीवन में भी हम परिवर्तन लाते हैं, उनको भी वो प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही महात्मा गांधी के बारे में हम कहते हैं, देश में वो महात्मा कहलाते थे, राष्ट्रपिता कहलाते थे, तो ऐसे ही नहीं कहलाते थे, ऐसे उसमें उनमें गुण थे। तो ऐसे कुछ प्रसंग हैं उनके जीवन के कि एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे और तीसरे दर्जे में थे, एक व्यक्ति चढ़ा जो पान चबा रहा था और वो जाकर उनके नजदीक बैठ गया। वो जानता नहीं था उनको, गांधी जी को वो जानता नहीं था, नाम जरूर सुना हुआ था उसने। तो आप जानते हैं हमारे देश में जो पान चबाता है वो थूकता है और कहीं भी थूक सकता है, आजादी है थूकने की। हाँ, आप विदेशों में ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपने ऐसा कर दिया तो भारी फाइन भरना पड़ता है। तो लोग गलती से भी वहां ऐसा काम नहीं करते हैं, लेकिन हमारे देश में किसी भी आप सार्वजनिक स्थान पर चले जाएंगे वहां की सारी दीवारें रंग बिरंगी होती हैं, है ना। तो ऐसे ही उसने किया, वो पान चबा रहा था, थूका उसने। अब पास में वो गांधी जी बैठे थे, उनके पैर पे ही वो थूक पड़ी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, उस थूक को पहुंच दिया। ते में स्टेशन आया और गांधी जी के लिए नारे लगा रहे थे लोग, गांधी जी की जय। उस समय वो महात्मा नहीं कहलाते थे, उनके गले में फूल मालाएं डाली गई और ये सब सीन उसने देखा और अब वो समझ गया कि जिनके ऊपर मैंने थूका वो तो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो तो गांधी जी हैं। और उसने गांधी जी की बहुत महिमा भी सुनी हुई थी, तो आज उसको समझ में आ गया कि वो महिमा ऐसे ही नहीं होती है। सचमुच मैंने देख लिया कि मैंने क्या किया और उन्होंने क्या किया, तो उसके मन में वो श्रद्धा हुई और फिर उसने नारा लगाया कि महात्मा गांधी की जय हो। तो फिर सब बोलने लगे महात्मा गांधी की जय हो। अब उसने महात्मा कब कहा उनको, हाँ अगर वो भी हमारे जैसे आम इंसान के जैसे करते, अगर कोई हमारे ऊपर थूक दे तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, अच्छी तरह से उसको समझा देंगे थूकने का मतलब क्या होता है ना। तो अगर वो भी ऐसे ही करते तो वो कभी भी उनको महात्मा नहीं कहता। कब उसने महात्मा समझा उनको, उन्होंने आम इंसान के जैसा व्यवहार नहीं किया, तो महानता हम इसको कहते हैं। तो हम कई बार समझ सकते हैं कि हम तो महान नहीं है, हम इतना सहन करेंगे फिर महान बनेंगे, ऐसे सहन तो राजयोग में कोई हमें ऐसे सहन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब स्वतः ही किसी के प्रति हमारा प्रेम होता है तब हमें उनकी कमी, उनकी गलती वो नजर ही नहीं आती। जैसे माँ को बच्चे से प्रेम है तो उसके अंदर कितनी भी कमियां हैं वो कमियां उसको कमियां लगती ही नहीं है। कितना भी उसको सहन करना पड़ता है अपने बच्चे का, वो सहज उस बात को सहन कर जाती है। तो प्रेम और दया क्षमा के गुण ऐसे हैं जिसे हम महसूस करते हैं कि हम सहन नहीं करते, वो हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है। तो ये राजयोग से हमें प्राप्ति होती है। दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, इनसे हम गुजरते हैं। कभी हम सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, कभी हमें लाभ होता है, कभी हानि भी हो जाती है। तो योगी अर्थात हर परिस्थिति में संतुलित, सुख में, लाभ में बहुत अहंकार में नहीं आ जाते और दुख में, हानि में हम बहुत दुखी, निराश नहीं हो जाते। ये स्थितियां मन को विचलित करने वाली होती हैं। तो मन स्थिर रहता है, मन शांत रहता है, मन संतुलित रहता है, ये राजयोग की बड़ी सिद्धि है। जैसे इस चित्र में दिखाया है, सागर है, उसमें अनेक नदियां समाती हैं, कैसा भी पानी लेकर के आती हैं, गंदगी पड़ती है सागर के अंदर, सब समा जाता है। सागर कभी अपना किनारा नहीं छोड़ता और की सतह भी स्वच्छ रहती है। अगर कोई हल्की वस्तु पड़ती है तो लहरें उसे उठाकर बाहर फेंक देती हैं, और भारी वस्तु पड़ती है तो सागर के तले में चली जाती है। ऐसे ही एक योगी इस संसार की अच्छी बुरी सब प्रकार की बातें देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन समाते नहीं है। ग्रहण वही करेंगे जो हमारे लिए उपयोगी है, सार्थक है। कबीर दास जी ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहाए, सार सार को गही दिए उधा दही उड़ाए। यानी एक सज्जन व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप, वो क्या करता है, कचरे को फेंक देता है और क्या रखता है, जो उपयोगी अनाज है उसे ही रखता है। तो हम भी अपने जीवन में क्या रखेंगे, क्या समाएंगे जो हमारे लिए उपयोगी है। समाने की शक्ति का दूसरा स्वरूप है, मानो कोई हमारे मित्र हैं, उन्हें समस्या है, वो हमसे राय लेना चाहते हैं, कोई सहयोग चाहते हैं, तो वो हमें अपनी बात कहते हैं और फिर कहते हैं ये मेरी व्यक्तिगत बात है, आप किसी को नहीं कहना। तो हम भी सुनते हैं और फिर हम उनको विश्वास भी दिलाते हैं, हम किसी को नहीं कहेंगे, लेकिन फिर हमारा कोई अपना होता है जिसे हम वही बात सुनाते हैं, फिर कहते हैं इनकी पर्सनल बात है, आप किसी को मत कहना। फिर उनका भी कोई अपना होता है, उसको वो सुना देते हैं और फिर कहते हैं आप किसी को मत कहना। अब जो बात नहीं फैलनी चाहिए वो फैलती है और फिर वो पूरा रूप भी बदल जाता है उसका, क्योंकि कहने वाला कभी भी उसी भाव से नहीं कहेगा जिस भाव से उसने कहा। हाँ, कहने वाला अपना भाव भी उसमें मिक्स करता है, तो कई बार अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, और जब बात उस तक पहुंचती है तो कैसा लगेगा, बहुत दुख होता है कि मैंने इतना विश्वास किया और मुझे धोखा मिला। एक बार ऐसे ही एक ब्राह्मण थे, पंडिताई करते थे, उनको शहर जाना था, तो उन्होंने समझा कि शहर पहुंचने में देर हो जाएगी, तो पत्नी को कहा खाना बांध देना, रास्ते में कहीं खाना खा लूंगा। तो लेकर चले और फिर रास्ते में एक स्थान देख करके पेड़ के नीचे उन्होंने खाना खाने के लिए सारा निकाला अपना भोजन, लेकिन जैसे ही थाली में डाला तो पेड़ के ऊपर वो एक पक्षी बैठा था, उसी समय उसने बीट कर दी और वो उनकी थाली में गिर गई। अब उनका मन खराब हो गया और फिर शहर जाने का भी उन्होंने विचार त्याग दिया और कहा कि वापस घर चलते हैं, फिर कभी जाएंगे। वापस आ गए। अब पत्नी ने सोचा कि ये शहर गए थे, इतना जल्दी कैसे आ गए, तो पूछने लगी क्या हुआ इतनी जल्दी आप वापस आ गए, शहर नहीं गए। अब वो बताना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको अपनी पत्नी का स्वभाव पता था कि अगर ये बात मैंने इसको बता दी तो पूरे गांव में फैल जाएगी, तो वो टालने लगे। पर उसने इतना जोर दिया कि हार कर उनको बताना पड़ा और फिर कहा देख ये बात किसी को कहना नहीं। तो उसने कहा मैं क्यों कहूंगी, लेकिन क्या हुआ दूसरे दिन वो पानी भरने गई और वहां पर सारी औरतें इकट्ठी होती हैं, तो उसको याद ही नहीं रहा और उसने बात बात में वो बात जो कल की थी कि मेरे पति शहर गए और उनके खाने में वो पक्षी की बीट गिर गई। अब जब चार लोग सुनते हैं तो किसी का पूरा ध्यान होता है, किसी का नहीं होता है, तो एक ने क्या सुना, पंडित जी की थाली में पक्षी गिर गया, पक्षी की बीट की जगह पक्षी गिर गया। अब वो बात थोड़ा फैली तो किसी ने ऐसे समझा बात फैलती है तो कैसे वो बदलती जाती है, पंडित जी के मुंह में पक्षी चला गया। फिर और फैली तो किसी ने सुना समझा ऐसे कि पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। अब ये बात पंचायत तक पहुंची और पंचायत ने सोचा कि ऐसे चमत्कार करने वाले पंडित जी हमारे गांव में रहते हैं, ये तो सबके सामने दिखाना चाहिए। तो उनको बुलाया गया और उनको पता ही नहीं कि मेरे बारे में इतना सब कुछ फैल चुका है। अब वो पहुंचे पंचायत में और जब सारी बात समझ में आई तो उनको लगा ऐसा कैसे हो गया, कैसे ये बात पंचायत तक आई। फिर उनका दिमाग चलने लगा और उनको याद आया कि उनकी पत्नी का काम है ये, मैंने उसको जो बोला वो बात ऐसे फैली है और अब कैसे इस चीज से बचा जाए। अब ऐसा कोई चमत्कार तो वो करते नहीं हैं, तो उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि मुझे पंचायत में क्या जवाब देना है। तो जब उनकी बारी आई कि उनको ये चमत्कार दिखाना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मुंह से पक्षी निकाल सकता हूँ, लेकिन जो वो पक्षी निकलता हुआ देख लेगा वो भी पक्षी बन जाएगा। तो जैसे ही लोगों ने सुना, सारे के सारे चुपचाप सभा से चले गए। तो देखा आपने कैसे अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। तो कई हमारे यहाँ एक कहावत बनी, घर का भेदी लंका ढाए। कहते हैं कि राम की विजय क्यों हुई, क्योंकि रावण का जो भाई था विभीषण, उसने रावण के सारे राज राम को खोल दिए। हमारा देश इतने सालों तक विदेशी आक्रमणकारियों का गुलाम रहा, क्योंकि राजाओं के पास ऐसे भेदीय होते थे जो उनके राज दुश्मन को खोल देते थे और उसके कारण वो विजयी हो जाते थे और हमारा देश जो है वो गुलाम हो गया। आज हम कई बार घरों में देखते हैं, सास अपनी बहू को कोई बात कहती है वो सुन लेती है, चुप रहती है, फिर लेकिन जो पड़ोस की बहू है वो उसकी सहेली है, उसके पास जाकर सारी बात कहती है, फिर कहती है तेरे को पता नहीं मैं कितना सहन करती हूँ, मेरी जगह कोई और होता तो इस घर से कब का ही अलग हो गया होता। अब वो बहू को सहानुभूति होती है, वो अपनी सास से कहती है। अब ये दोनों सास मिलती हैं और वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसको अपनी बहू के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब ये सास सोचती है मेरे घर की बात इनको कैसे पता है, और उसको जब समझ में आता है तो अब संबंध बिगड़ जाएंगे या सुधर जाएंगे। तो कई बार हमारे घर की स्थितियां ऐसे बिगड़ जाती हैं कि वो फिर कभी सुधर नहीं पाती। तो समाने की शक्ति अर्थात गंभीरता, जब हमें जो बात जिस भाव से कहनी है वैसे ही हम कहें, और अगर नहीं कहनी है, कोई ऐसी राज की बात है जो हमें किसी को नहीं कहनी चाहिए, तो फिर हम उसे न कहें। तो ये शक्ति हमें ज्ञान और योग से प्राप्त होती है। तीसरी और चौथी शक्ति है परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। दोनों शक्तियां भी हमारे जीवन में साथ साथ चलती हैं। हमें कई बार व्यक्ति परिस्थिति को परखना पड़ता है, मन दुविधा में होता है, ये गलत है सही है, इसे करें नहीं करें, हाँ उचित है अनुचित है। और यदि हम सही परख लेते हैं, सही निर्णय लेते हैं, तो जीवन में हम सफल होते हैं। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर कई बार बहुमूल्य अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं और फिर हमें पश्चाताप करना पड़ता है। तो यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं जौहरी, जिससे आभूषणों की परख होती है, रत्नों की परख होती है, और इस आधार पर ही वो अपने व्यवसाय में सफल होता है। उसे पता है कि सोना कितना खरा है, उसमें कितनी मिलावट है, कितने कैरेट का है, हीरा असली है या नकली है, क्योंकि उसके पास वो विशेष ज्ञान है। एक डॉक्टर के पास बीमारी का ज्ञान है तो वो बीमारी को परखता है और सही इलाज कर पाता है। तो जिस भी क्षेत्र में हम हैं, उस क्षेत्र का अगर संपूर्ण ज्ञान हमें है, तब हमारी परखने की शक्ति बेहतर होती है। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन में होता है, तब बुद्धि स्वच्छ और स्पष्ट होती है। जैसे स्वच्छ जल में तले की चीज भी हमें साफ दिखाई देती है, अगर गंदा जल होगा तो नहीं दिखाई देगी। तो बुद्धि अगर स्वच्छ है तो किसी के भाव को भी हम परख सकते हैं। आज मनुष्य कई बार अंदर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं। वास्तव में जो आपसे वो कह रहे होते हैं वैसे मन में वो आपके प्रति नहीं होते हैं। तो यदि हम उनके भाव को परख सकते हैं, जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं आज की भाषा में, तो यदि हम उसको परख लेते हैं तो फिर हम उनके प्रति सावधान रहते हैं, या भविष्य में हमें उनके प्रति जो निर्णय लेना है वो हम ले पाते हैं। एक बार एक राजा के दरबार में एक व्यापारी आया और बहुत बहुमूल्य हीरे लेकर के आया। राजा को उसने भेंट किए, राजा ने देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि इतने बहुमूल्य हीरे कोई ऐसे भेंट कर सकता है, तो उसे लगा कि इसमें कुछ नकली हो सकता है। तो उसने अपने दरबारियों को दिखाया तो दरबारियों ने कहा, महाराज हमको हीरे की समझ नहीं है तो हम नहीं बता सकते ये असली हैं या नकली हैं। तो फिर राज्य में घोषणा कराई तो एक अंधा फकीर आया और उसने कहा, महाराज मैं आपको बता सकता हूँ हीरे असली हैं या नकली हैं। तो राजा ने कहा, तुमको तो दिखाई भी नहीं देता है, तुम कैसे बता सकते हो। तो उसने कहा, आप मुझे दीजिए, मैं सूर्य के प्रकाश में आपको ये हीरे अलग कर दूंगा, सही परख कर दूंगा इसकी। तो वो लेकर के गया, उसने सूर्य प्रकाश में हीरे रखे, फिर एक एक हीरे को वो हथेली पर रखता था और उसने बता दिया कि ये सारे हीरे नकली हैं। तो राजा ने कहा, तुमने कैसे कहा। तो उसने कहा, महाराज मुझे पता है कि जो असली हीरे हैं वो सूर्य के प्रकाश में गर्म नहीं होते, तो ये हीरे सभी गर्म हो गए, वो हथेली पर रख के मुझे पता चल गया और इसके कारण ये सारे हीरे नकली हैं। तो वो विशेष ज्ञान उसके पास था जिसके आधार पर उसने परख लिया कि ये हीरे असली हैं या नकली हैं। तो ज्ञान जो है वो हमारे परखने की शक्ति को बढ़ाता है और साथ साथ निर्णय शक्ति को इसमें तराजू से दिखाया है। इसके तीन भाग हैं, एक कांटा, डंडा और पलड़ा। सही तौल के लिए कांटा सीधा होना चाहिए, डंडा संतुलित होना चाहिए और पलड़े बराबर होने चाहिए। ऐसे ही सही निर्णय लेने के लिए हमारी मन की स्थिति इस प्रकार की होनी चाहिए कि मन एकाग्र हो, संतुलित हो, निष्पक्ष हो। अगर मन उलझन में है, बहुत विचार हमारे मन में चल रहे हैं और अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो जब हम योग अभ्यास करते हैं तब हमारे मन की स्थिति ऐसी बन जाती है, मन शांत होता है, एकाग्र होता है, संतुलित होता है और हमें स्थिति स्पष्ट समझ में आती है और हम सही निर्णय कर सकते हैं। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति को एक चमकता हुआ पत्थर मिला तो उसे सुंदर लगा, तो उसने सोचा कि मेरे पास गधा है, मैं गधे के गले में ये पत्थर बांध दूंगा तो वो और सबका ध्यान उसकी तरफ जाएगा, मतलब मेरे गधे की तरफ सबका ध्यान जाएगा। तो ऐसे उसने किसी भी तरह से वो पत्थर अपने गधे के गले में लटका दिया। अब एक जौहरी की नजर उस पर पड़ी, जब वो अपने गधे को लेकर जा रहा था तो वो अपनी दुकान से बाहर आया और उसने वो पत्थर को हाथ लगा के देखा। तो उसने उसको पूछा, वो समझ गया कि इसको ये नहीं पता है कि ये पत्थर हीरा है, तो उसने उसको पूछा कि तुम पत्थर बेचोगे। तो उसने कहा, अच्छा ये बिक सकता है। तो उसने कहा, हाँ क्यों नहीं बिक सकता है। तो उसने कहा, अच्छा बिक सकता है तो मुझे 200 रुपए की जरूरत है, तुम मुझे 200 रुपए दो, ये पत्थर ले लो। तो उसने कहा, नहीं 200 तो नहीं दूंगा, मैं तुमको 100 रुपया दूंगा। तो उसने कहा, नहीं 100 में मैं नहीं दूंगा, और फिर वो आगे चला गया। तो एक दूसरे जौहरी ने देखा तो वो भी बाहर निकल के आया और वो भी समझ गया इस बात को, और उसने वही बात कही उसको कि तुम पत्थर बेचोगे। तो उसने कहा, हाँ बेचूंगा लेकिन 200 रुपया चाहिए। तो उसने बिना कुछ सोचे उसको 200 रुपया पकड़ाया और वो पत्थर ले लिया। उसको पता था इसकी कीमत तो कई हजारों में है, ये तो सिर्फ 200 रुपए की बात है। अब वो जो पहले वाला जौहरी था उसको लगा कि मैंने 100 रुपए के पीछे इतना महंगा हीरा छोड़ दिया, क्या बुरा था, ले लेना चाहिए। तो वो दौड़ते दौड़ते आया, उसका पीछा करते वहां पहुंचा, उसको कहा कि वो पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें 200 रुपया देता हूं। तो उसने कहा, लेकिन अभी तो मैंने वो बेच दिया और मुझे 200 रुपया मिल भी गया। तो उसने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुमको पता नहीं था कि वो हीरा है और तुमने वो हीरा 200 रुपए में बेच दिया। तो वो सोचने लगा, उसने कहा कि मेरे से बड़े मूर्ख तो फिर तुम हो। हाँ, मेरे को तो पता ही नहीं था वो हीरा है, तेरे को तो पता था वो हीरा है, फिर भी 100 रुपए के पीछे तुमने हीरा छोड़ा। तो सही समय पर उसने सही निर्णय नहीं लिया तो परिणाम वो उस मौके को चूक गया अपने जीवन में। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। सामना करने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। आप हम सभी जानते हैं, महसूस भी करते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं आती रहती हैं और हमें उनका सामना करना ही पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे उनका सामना करते हैं। तो यहाँ आप चित्र देख रहे हैं, मानो किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है। तो कई लोग इतने दुखी हो जाते हैं उनकी मृत्यु को लेकर के कि वो दिनों तक महीनों तक सामान्य नहीं हो पाते, जैसे कि उसके साथ उनका जीवन भी चला गया। और स्थिति ऐसी हो जाती है कि दवाइयां खाकर के उन्हें अपना जीवन चलाना पड़ता है। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति समझता है आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये शरीर की मृत्यु है, आत्मा की मृत्यु नहीं है। उस आत्मा का जब तक हमारे साथ कर्म संबंध था तब तक वो हमारे साथ थी। अब वो कर्म संबंध समाप्त हुआ है तो जहां उसका पार्ट है वहां वो पार्ट बजाने के लिए गई है। तो हम उसके भविष्य जीवन के लिए हैं, क्योंकि हमें पता है जो चला गया वो अब लौट कर आने वाला नहीं है, पर कम से कम उसके भविष्य जीवन के लिए हम शुभकामनाएं तो दे सकते हैं, उनको शांति का दान दें, हम सहयोग दें। लेकिन यदि हम बहुत दुखी होते हैं तो वो भी उस आत्मा तक पहुंचता है। ये सूक्ष्म स्तर पर होता है, जैसे मन के भाव पहुंचते हैं, जिसे हम वाइब्रेशंस कहते हैं, वो उस आत्मा तक पहुंचता है। ऐसे ही एक बार एक भाई थे, उनके एक जवान बेटे की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, इकलौता बेटा था, तो इतना दुखी वो उसकी मृत्यु के बाद। ऐसे कई लोग हमसे बात करते भी हैं, तो वो महीनों तक हर दिन उसकी याद में रोते थे। तो एक दिन, कई बार ऐसी आत्माएं वो सपने में आकर के अपना संदेश देती हैं, तो ऐसे ही एक दिन उन्होंने सपना देखा कि मेरा बेटा फरिश्तों की सभा में है और सभी के हाथ में एक कैंडल है। वो कैंडल जल रही है लेकिन बेटे के हाथ में जो कैंडल है वो बुझी हुई है। तो उन्होंने उसको पूछा, बेटा तुम्हारी कैंडल क्यों बुझी हुई है? तो उसने कहा कि पिताजी, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरी कैंडल जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप रोज रोते हैं, आपके आंसू इस पर गिरते हैं और मेरी कैंडल बुझ जाती है, प्लीज आप रो नहीं। तब उनको समझ में आया कि मेरे रोने से मेरे बेटे के भविष्य जीवन पर असर हो रहा है, और उसके बाद से फिर उन्होंने रोना बंद किया। तो कई कहते हैं, बहन जी हम सचमुच रोना नहीं चाहते, लेकिन अगर हम रोएंगे नहीं, कई बार हमको दिखाने के लिए रोना पड़ता है, रोएंगे नहीं तो लोग क्या समझेंगे, इनको प्यार ही नहीं था। तो ऐसा नहीं है, जरूर हमारा जो उस आत्मा के प्रति कर्तव्य है वो हम पालन करें। दुख होता है, जिनसे बहुत प्यार होता है अगर वो चले जाते हैं तो कई बार सचमुच दुख होता है, लेकिन बहुत ज्यादा दुखी होने की बजाय हम उनके प्रति जो भी हम सहयोग दे सकते हैं, जो भी कर्तव्य कर सकते हैं वो हम करें। अन्य भी कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जीवन में, मानो कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, कोई ऐसी हानि हो जाती है, आज प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसमें अचानक हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, या हमारे कोई संबंधी हैं, मित्र हैं, उनको उसमें हानि होती है, चोरी हो जाती है या आग लग जाती है। तो एक ज्ञानी व्यक्ति कर्म की गति को समझता है, वो जानता है कि हर कारण का कोई परिणाम होता है, तो जो भी परिणाम मेरे सामने आया है उसके पीछे अवश्य कोई कारण है। तो फिर हम धैर्य रखते हैं और भविष्य के लिए अपने कर्मों के प्रति सावधान रहते हैं, और ये भी समझते हैं कि हर घटना के दो पहलू हैं। अगर किसी में हमारा बुरा है तो उसमें भला भी है, जैसे उस दिन हमने बात की थी। तो इसमें शास्त्रों पर एक बहुत अच्छी बोध कथा आती है कि कैसे बुराई में भी भलाई छुपी होती है। एक बार एक राजा का बहुत बुद्धिमान मंत्री था और वो अपने हर कार्य में सलाह लेता था मंत्री से। राजा की उंगली कट गई एक बार और उसने अपने मंत्री को दिखाया तो मंत्री ने कहा महाराज जो हुआ वो अच्छा हुआ। राजा को गुस्सा आ गया, अच्छा कैसे हुआ? तो वो उसको लगा मंत्री वफादार नहीं है और गुस्से में आकर के उसने अपने मंत्री को जेल में बंद करा दिया। अब वो राजा को शिकार खेलने का शौक था तो वो शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है। शिकार का पीछा करते करते काफी घने जंगल में चला जाता है और वहां कबीले वाले लोग थे। उस दिन उनका कोई उत्सव था और वो देवी को मनुष्य की बलि चढ़ाने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। तो ये राजा पकड़ा जाता है और जब राजा को सारी बात समझ में आती है तो वो समझाने की कोशिश करता है कि मैं आपका राजा हूं, आप मेरी बलि चढ़ाओगे? तो कहते हैं राजा तो सर्वोत्तम होता है, ऐसी बलि पाके तो हमारी देवी बहुत प्रसन्न होगी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उसे ले जाते हैं वो मंदिर में पुजारी के पास। अब बलि का नियम होता है कि अंग भंग नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही पुजारी देखता है इसकी तो उंगली कटी हुई है, वो कहता है ये बलि तो संपूर्ण नहीं है, देवी इसे स्वीकार नहीं करेगी, नाराज हो जाएगी, इसको छोड़ दो, दूसरा मनुष्य ढूंढो। राजा छूटता है और उसे सारी बात समझ में आती है और याद आता है मंत्री ने ऐसा कहा था। उसने कहा सचमुच आज उंगली कटी हुई थी इसीलिए बलि चढ़ने से बच गई, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं था। और वो जाते ही मंत्री के पास पहुंचता है, उसको जेल से छोड़ता है और कहता है मंत्री जी माफ कर दीजिए, मुझे आज आपकी बात समझ में आई, लेकिन एक प्रश्न है मेरे मन में, मैंने आपको जेल में बंद किया ये तो आपके साथ बुरा ही हुआ। तो उसने कहा नहीं महाराज ये भी अच्छा हुआ क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ जाता हूँ, आज मैं जेल में था इसलिए आपके साथ नहीं था, और यदि मैं आपके साथ होता तो आपकी बजाय हम दोनों ही बच गए। तो देखने में घटना कैसी थी, दोनों के लिए बहुत बुरी थी, लेकिन उसमें दोनों का ही भला छुपा हुआ था, कल्याण छुपा हुआ था। तो जीवन में कई बार हमें भी समझ में नहीं आता, वर्तमान को हम जब देखते हैं तो हमें लगता है बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, हम असफल हो गए, हमारी हानि हो गई, लेकिन उसी में कहीं ना कहीं हमारा लाभ होता है। जो गीता में कहा जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छे से अच्छा होगा। और एक राजयोगी ये भी समझता है और महसूस भी करता है कि भगवान मेरे साथ है, क्योंकि हम अपनी याद से ईश्वर के साथ का अनुभव करते हैं और हमारी शक्ति बढ़ जाती है। जैसे महाभारत में प्रसंग आता है कि कृष्ण अर्जुन के साथ थे युद्ध के समय, तो फिर उसे कभी भी भय नहीं लगता था। एक बार ऐसे ही अभिमन्यु को धोखे से मार दिया गया तो गुस्से में आकर के अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं को ही जिंदा चिता में जला दूंगा, यानी वो तो या तो वो मरेगा या मैं मरूंगा, ऐसा उसने प्रण कर लिया। अब कृष्ण जानते थे कि ये इतना आसान नहीं है तो उनको चिंता हो गई। और उस दिन रात को शिविर में सारे लोग जब सोए हुए थे वो युद्ध की योजना बना रहे थे कि कैसे कल का युद्ध लड़ा जाएगा जो अर्जुन की विजय हो। उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी तो वो अर्जुन तो सोया पड़ा है, तो उनको लगा ये कैसे सो सकता है, इसको याद नहीं है इसने क्या प्रतिज्ञा की है। तो उन्होंने उसको उठाया, कहा अर्जुन तुम सो रहे हो, तुम भूल गए हो तुमने क्या प्रतिज्ञा की है। तो अर्जुन ने कहा माधव मुझे याद है, लेकिन मुझे ये भी याद है कि आप मेरे साथ हो तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हम अपनी चिंताएं भगवान को सौंप सकते हैं, भगवान हमारे साथ है, और जब हम उसे सौंप देते हैं तो फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं और हमारी सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे बच्चे माँ बाप को अपनी बात कहते हैं और क्या हो जाते हैं, अब कौन संभालेगा, माता पिता संभालेंगे। तो हमारे माता पिता कौन है, परमात्मा शिव, अभी आपने समझ लिया है। ऐसे ही सहयोग की शक्ति, एक राजयोगी सभी का सहयोगी होता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम सब आत्माएं हैं, एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम सभी परम धाम से सृष्टि पर आए हैं। चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, भाषा के हैं, देश के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। ये पूरा विश्व एक परिवार है। हम अपनी संस्कृति में सुनते आए हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन सही अर्थों में ये वसुधा परिवार कैसे है इसे हम समझ पाते हैं, और इसीलिए सभी के प्रति हमारी सहयोग की भावना रहती है। ऐसे नहीं कि 4, 6, 10 लोगों का परिवार मेरा परिवार है और इन्हीं के प्रति मेरी शुभ भावना है, सहयोग की भावना है, नहीं। संसार की किसी भी आत्मा को यदि सहयोग चाहिए और हम कर सकते हैं तो हम अवश्य करते हैं। जहां सहयोग होता है वहां एक और एक दो नहीं, कितने होते हैं? 11 होते हैं। यानी बड़े बड़े कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं, सहज सफल हो जाते हैं। जैसा आप यहाँ देखते हैं, इतना बड़ा ईश्वरी विश्वविद्यालय है और इसका कार्य कितना सहज रूप से चलता है। तो हर एक व्यक्ति तन मन धन जिस तरह से सहयोग कर सकते हैं वो करते हैं। तो एक बार ऐसे ही हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने देवताओं और असुरों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, और उसका कारण था कि असुर देव शिकायत करते थे ब्रह्मा जी से कि आप देवताओं का पक्षपात करते हैं। तो वो ये बताना चाहते थे कि देवताओं में विशेष गुण है, तो वो सिद्ध करने के लिए उन्होंने भोजन के लिए एक शर्त रखी कि भोजन करते समय हाथ बांध दिए जाएंगे, यानी वो अपनी कोहनी नहीं मोड़ सकते तो भोजन मुंह में डालना मुश्किल होगा। तो ऐसे ही हुआ, पहले असुरों को बिठाया गया, उनके हाथ बांध दिए गए और वो मुंह में भोजन नहीं डाल सकते थे। बहुत कोशिश कर ली उन्होंने, फिर वो उठ गए, और उसके बाद देवताओं को बिठाया गया, अब उनकी बारी थी तो उनके भी हाथ बांध दिए गए, वो भी भोजन मुंह में तो नहीं डाल सकते थे। लेकिन देवताओं ने सोचा कि हम खुद भोजन तो नहीं कर सकते हैं लेकिन दूसरे को तो खिला सकते हैं, तो वो आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के आमने सामने बैठे और एक ने दूसरे को भोजन कराया, और इस तरह से भर पेट भोजन उन्होंने कर लिया, तो सिद्ध भी हो गया। जो काम असंभव था वो देवताओं ने अपने सहयोग के गुण के आधार पर सहज संभव कर लिया। तो चित्र में हम देख रहे हैं कि भागवत में प्रसंग आता है, गोकुल पर जब बाढ़ का संकट था तो श्री कृष्ण ने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, तो केवल श्री कृष्ण की उंगली नहीं थी लेकिन सभी गोप गोपियों की उंगली का उसमें सहयोग था। तो परमात्मा भी जब इस संसार में परिवर्तन का कार्य करते हैं, ये यादगार है उनके कार्य का, कोई सचमुच पर्वत उठाने वाली बात नहीं है, तो वो कोई जादू मंत्र से संसार का परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन परमात्मा अपने साथ साथ अन्य आत्माओं का भी परिवर्तन करते हैं, और उसके सहयोग से ये कलयुगी पर्वत उठ जाता है। जैसे कहते हैं यदि हमें कहा जाए तो हम समझते हैं कि इतना बड़ा संसार है, क्या ये सचमुच बदल करके इस संसार में सत्युग हो सकता है? असंभव लगता है। एक अगर हम नजर से देखते हैं तो ये कार्य इतना सहज नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि संसार मनुष्य आत्माओं से बना है, और यदि वो सभी मनुष्य आत्माएं परिवर्तन हो जाती हैं तो हम ही इसे कलयुग बनाने वाले हैं, और हम बदल जाएंगे तो ये संसार क्या हो जाएगा? सतयुग हो सकता है। एक बार एक जंगल में आग लगी और जो जानवर थे वो भागने लगे, लेकिन एक छोटी चिड़िया थी वो तालाब पर जाती थी, चोंच में पानी भर के वो आग पर डाल रही थी। तो जानवर हंसने लगे कि चिड़िया तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी ये चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा मुझे पता है कि चोंच भर पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी भविष्य में इस आग का जिक्र होगा मेरा नाम भागने वालों में नहीं होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। तो जानवरों में हाथियों ने सुना तो तो उन्होंने सोचा इतनी छोटी चिड़िया इतनी हिम्मत, हम तो आग बुझा ही सकते हैं। तो उन्होंने सून में पानी लेकर आग पर डालना शुरू किया तो वो आग बुझ गई। अब आग किसने बुझाई? देखने में तो हाथियों ने बुझाई, लेकिन प्रेरणा कहाँ से मिली? उस छोटी चिड़िया से। तो कई बार हम भी सोचते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में अगर मैंने कहीं कुछ परिवर्तन कर लिया तो उससे इतने बड़े संसार में क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि यदि हम हिम्मत रखते हैं, हम दृढ़ता रखते हैं, तो हमारे संपर्क में अनेकों होते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है। जब गांधी जी को आजादी का संकल्प आया, वो बिल्कुल अकेले थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी तो धीरे धीरे पूरा भारत उनके साथ जुड़ा और भारत आजाद हुआ। जब परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू किया, तब ब्रह्मा बाबा भी बिल्कुल अकेले थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी तो आज ये ईश्वरीय कार्य इतना विशाल रूप ले चुका है। और धीरे धीरे क्या होगा? सबके सहयोग से ये संसार सुखमय संसार बन ही जाएगा। और सातवीं शक्ति जो प्राप्त होती है वो है विस्तार को सार में लाने की शक्ति। आठवीं शक्ति है समेटने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां भी हमारे जीवन में साथ साथ चलती हैं। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कछुआ है। प्रकृति में ऐसा प्राणी होता है जिसके शरीर पर एक कठोर खोल होता है और वो अपने अंगों को उसमें समेटे रहता है और इस तरह से वो सुरक्षित रहता है। लेकिन जब उसे खाना होता है, चलना होता है, अपने अंग वो बाहर निकालता है, अपना कार्य करता है और फिर से वापस अपने अंगों को समेट लेता है। और इसलिए कहते हैं कछुआ सबसे लंबी उम्र जीता है। एक योगी का जीवन भी इसी प्रकार का होता है कि हम कार्य करते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि को कार्य में लगाते हैं, कुशलता से अपना कार्य करते हैं, लेकिन जब कार्य समाप्त हो जाता है तो अपने इंद्रियों को समेट सकते हैं, कछुए की तरह समेट सकते हैं। हम उसे समेट कर अपनी आत्मा में स्थित करते हैं और आत्मिक शांति, आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ तक कि इस संसार से भी पार, इस संसार से न्यारा होकर मन को हम परम धाम में परमात्मा की याद में स्थित करते हैं और मन की स्थिति ऊंची हो जाती है तो सारी समस्याओं से मन पार हो जाता है। जैसे एरोप्लेन जब उड़ता है आकाश में तो उसके लिए नीचे आने वाले पहाड़, नदियां, मनुष्य कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत ऊंची है, वो ऊंचाई पर उड़ रहा है। ऐसे ही मन की स्थिति जब ऊंची होती है तब संसार की परिस्थितियों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, हम उससे न्यारे हो जाते हैं। तो ये कला जब हम चाहें तब शामिल हो जाएं और जब चाहें हम न्यारे हो जाएं, ये योगी में होती है जिसे हम कमल फूल समान जीवन कहते हैं। और समेटने की शक्ति, हम सभी जानते हैं इस संसार का सत्य है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। कहा जाता है आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, लेकिन शायद जीवन भर हम इस सत्य को भूले रहते हैं और इसीलिए मोह माया विषयों में मन लगा रहता है। हम सोचते हैं जीवन तो सदा ही चलने वाली है। तो संसार में तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सोचते हैं मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, मेरा तो मेरा है ही, आपका भी मेरा कैसे बन जाए? तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वार्थी प्रवृत्ति। हाँ, दूसरे प्रकार के होते हैं जो सोचते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, आपका मुझे नहीं चाहिए लेकिन मेरा हम आपको नहीं देंगे। और तीसरे प्रकार के होते हैं न कुछ तेरा न कुछ मेरा, यानी संसार में न कुछ हम लेकर के आए हैं और ना ही हम कुछ लेकर के जाने वाले हैं। इस सत्य को वो सदा याद रखते हैं और इसीलिए कोशिश करते हैं कि वो दूसरों को कितना दे सकते हैं और इसे हम कहते हैं आध्यात्मिक वृत्ति, आध्यात्मिक सोच इसे हम कहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि कोई कितना भी मिलियनर क्यों ना हो, कितना भी उसने संपत्ति जमा की हो, क्या अपने साथ ले जाने वाला है? एक पैसा भी कोई अपने साथ नहीं ले जा सकता। और इसीलिए सिकंदर महान की कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि उसने अपनी मृत्यु के समय अपने वजीर को कहा कि मेरे हाथ कोफिन से बाहर निकाल देना। तो उसने पूछा, क्यों आप ऐसा चाहते हैं? तो उसने कहा कि मैं विश्व विजेता कहलाता हूं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, लेकिन आज जब मैं मर रहा हूं तो मैं क्या ले जा रहा हूं अपने साथ? खाली हाथ जा रहा हूं। तो संसार को संदेश मिले कि इतना बड़ा सिकंदर महान भी खाली हाथ गया। एक बार एक व्यक्ति था, उसके तीन मित्र थे। तो उसमें जो पहला मित्र था वो घनिष्ठ मित्र था, दिन रात उसके साथ उठता बैठता था। दूसरा शहर में दूर रहता था तो कभी कभी मिलता था, लेकिन दोस्ती थी। तीसरा दूसरे शहर में रहता था तो कभी महीनों में सालों में मिलना होता था। अब इसे गलत मुकदमे में फंसा दिया गया। कई बार ऐसा होता है, तो उसने हत्या नहीं की थी लेकिन किसी ने हत्या का आरोप उस पर लगा दिया और सिद्ध भी कर दिया गवाहों के आधार पर कि इसने हत्या की है, तो उसको सजा हो गई, उम्र कैद हो गई। तो लोग अपील करते हैं, तो उसने अपील की हाई कोर्ट में कि मैंने तो हत्या नहीं की है, मुझे क्यों सजा दी जा रही है? तो जज ने कहा कि तुम अपने पक्ष में गवाह लाओगे तभी तुम्हारी सजा बदल सकती है, नहीं तो गवाहों से सिद्ध हो चुका है। तो उसने सोचा मेरे दोस्त हैं और वो ऐसे समय पर जरूर मेरी मदद करेंगे। तो उसने सबसे पहले अपने उसी दोस्त को कहा कि दोस्त तुम मुझे जानते हो, तुम मेरी गवाही दो। तो उसने कहा कि मेरे को कोर्ट से बहुत डर लगता है, मैं कोर्ट के मामलों में नहीं पढ़ना चाहता, तुम्हें कोई और सहयोग चाहिए तो मैं दे सकता हूं। तो उसने उसे समझाने की कोशिश की कि अगर तुम गवाही नहीं दोगे तो मुझे सजा हो चुकी है, लेकिन वो माना नहीं। फिर उसने दूसरे दोस्त को पूछा, तो उसने कहा दोस्त मैं तुम्हारे साथ अदालत तक आ सकता हूं, लेकिन वो कटघरे में खड़े होकर गवाही देने की मेरी हिम्मत नहीं है। उसने बहुत समझाया कि नहीं गवाही ही देनी है, लेकिन वो भी तैयार नहीं हुआ। अब तीसरे से तो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा पूछ लेते हैं। पूछा तो तीसरे दोस्त ने कहा, दोस्त मैं आ रहा हूं और मैं तुम्हारी गवाही दूंगा। तो आत्मा के भी तीन दोस्त हैं। पहला दोस्त ये शरीर है, दिन रात जीवन भर शरीर और आत्मा का साथ है, लेकिन जब अंतिम समय आता है तब सबसे पहले ये शरीर ही छूट जाता है, भगवान के पास आत्मा को अकेले ही जाना है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। दूसरा हमारा जो मित्र है वो हमारे सब संबंधी हैं, जिनको हम मेरा समझते हैं और जिनके लिए हम काफी अपने जीवन में समय देते हैं, साथ देते हैं, लेकिन वो कहाँ तक आ जाते हैं? शमशान घाट तक। वो हमें अंतिम विदाई, अदालत तक अंतिम विदाई देने के लिए आते हैं। उसके आगे की यात्रा आत्मा को खुद ही करनी है। लेकिन भगवान के दरबार में हमारी गवाही कौन सा दोस्त देता है? सच्ची गवाही कौन देता है? वो हमारे कर्म। वो तीसरा दोस्त है, दूर का दोस्त है, क्योंकि उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जाने वाले साथ में कौन है? हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। तो एक ज्ञानी व्यक्ति सत्य को समझता है और वो सारा समय केवल धन कमाने में या केवल शरीर की प्रवृत्ति में या सिर्फ संबंधों की जिम्मेवारी के निर्वाह में ही नहीं देता, लेकिन कुछ समय हम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी अवश्य देते हैं, ताकि हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकें। वही कर्म हमारे जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध है, वो आत्मा की अविनाशी कमाई है जो आत्मा के साथ जाने वाली है। तो इस तरह से इस विस्तार को समेटने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। नहीं तो हम क्या कहते हैं, कभी भी हमें ऐसे कार्य करने के लिए कहा जाता है तो हम कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है, हम व्यस्त हैं। कहाँ व्यस्त हैं? इन्हीं सब में जो विनाशी हैं, जो आत्मा के साथ जाने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से ये जो भी शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, उसके द्वारा हम विकारों पर विजय पाने लगते हैं। काम विकार पर विजय होती है क्योंकि आत्मिक दृष्टि हो जाती है, जो शुद्ध वृत्ति है। आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती है, आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। और इस तरह से देह की सीमाओं से मन ऊपर उठने लगता है। हम क्रोध पर विजय पाते हैं क्योंकि शांति की शक्ति आ जाती है, प्रेम दया क्षमा के भाव मन में होते हैं, तो सहज ही हम क्रोध को जीत लेते हैं। लोभ समाप्त होता है क्योंकि जीवन में संतोष का गुण आता है, और हम स्वार्थी नहीं परोपकारी बनते हैं। अध्यात्म हमें परोपकार सिखाता है। से ही मोह समाप्त होता है क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ विनाशी है, कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। और हम ट्रस्टी भाव से जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसे हम प्रयोग करते हैं। और अहंकार समाप्त होता है, जीवन में नम्रता आती है क्योंकि हम जानते हैं करण करावन हार परमात्मा है, हम तो नमित हैं। तो इस तरह से स्व परिवर्तन होने लगता है, जीवन में हम सुख शांति अनुभव करते हैं। और ना सिर्फ हम स्वयं लेकिन परमात्मा के इस महान कार्य में भी हम सहयोगी बन जाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में हमें ये शक्तियां अनुभव होने लगती हैं, लेकिन प्रतिदिन हम जब योग अभ्यास करते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में शक्तियों से हमारे विकार समाप्त होने लगे हैं, गुणों का विकास हमारे जीवन में होने लगा है। तो आपने काफी सेशंस जो सुने हैं और अभी भी एक सेशन और आपका होने वाला है, तो इन सभी को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं, आप जो भी सुन रहे हैं इसे आप मनन करेंगे, उसे अपने जीवन में अपना करके चलेंगे, तो अवश्य ये परिवर्तन आप जीवन में अनुभव करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये सत्र समाप्त करती हूँ। ओम शांति। जैसे आप रोज योग का अभ्यास करते हैं ऐसे ही कुछ मिनट हम राजयोग का अभ्यास करेंगे। सभी सीधे होकर बैठ जाएंगे। अपने मन को अपने आसपास के वातावरण से, व्यक्तियों से, आवाजों से न्यारा कर लें, समेट लें अपने मन को। ये कुछ समय मेरा स्वयं के लिए और ईश्वर से मिलन का अनुभव करने के लिए है। अभी मैंने समझा है, मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं देह से भिन्न एक चेतन शक्ति हूँ। दिव्य शक्ति हूँ, चमकते हुए सितारे के समान मस्तक के मध्य में मैं एक आत्मा हूँ। इस संसार में कर्म करने के लिए मैंने इस शरीर का, कर्मेंद्रियों का आधार लिया है। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। इस संसार में अनेक नाम रूप वाले शरीर लेकर मैंने जन्म जन्मांतर पाठ बजाया है। ये सृष्टि एक विशाल रंगमंच है। मेरा निज धाम सूर्य चांद तारों से भी पार परम धाम है। मैं परम धाम से सृष्टि पर आई हूँ, जहां सर्वत्र सुनहरी लाल प्रकाश है, संपूर्ण शांति है। मेरे परम पिता परमात्मा शिव मेरे ही समान ज्योति बिंदु स्वरूप है। लेकिन गुणों में सागर के समान है। मैं अपने मन रूपी अंतर्चक्षु के द्वारा स्वयं को परमात्मा के अति समीप देख रही हूँ। वो शांति के सागर हैं, उनके समीपता में मेरा मन शांति का अनुभव कर रहा है। मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। परमात्मा प्यार के सागर हैं। वो परम पवित्र हैं। उनकी याद से मेरा मन पावन होता जा रहा है। वो सर्वशक्तिमान हैं। परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं और जब परमात्मा मेरे साथ हैं तो मैं अपने जीवन में जो परिवर्तन लाना चाहती हूँ ला सकती हूँ। शिव बाबा ही मेरे सच्चे सच्चे माता पिता, मेरे सत शिक्षक और सतगुरु हैं। मुझे सद्बुद्धि देने वाले हैं। शिव बाबा के साथ के ये पल मुझ आत्मा के लिए बहुत अनमोल हैं। मुझे ईश्वरीय सुख का अनुभव हो रहा है। मैं आनंद के सागर से आनंद का अनुभव कर रही हूँ।
मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि स्वयं परमात्मा का ज्ञान तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान परमात्मा से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अपने जीवन को ईश्वरीय मत के अनुसार श्रेष्ठ बनाऊंगी। और अब पुनः आ जाए इस भौतिक जगत में, मैं स्वयं को साकार शरीर में अनुभव कर रही हूँ, लेकिन अब मेरे मन की स्थिति पहले से कहीं अधिक शांत, अधिक शक्तिशाली है। अपने दिन भर के कार्य व्यवहार में भी मैं ऐसे ही शांति से, शक्ति से अपना कार्य करूंगी, व्यवहार में आऊंगी। ओम शांति।